आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है नियति और आज के हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश किताब की जो हमने फर्स्ट चैप्टर कवर करा था, अ लेटर टू गॉड। उसके क्वेश्चन आंसर्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट अप विद अ लेक्चर, लेट मी टेल यू ऑल कि हम ब्रीफली देखते हैं क्या स्टोरी थी हमारी। तो बेसिकली हमारे एक फार्मर थे जिनका नाम था लेंचो। उनका खेत था, मक्के का उनका खेत था, वो तबाह हो गया था बिल्कुल भी बिकॉज ऑफ द स्नो स्टॉर्म, मतलब हेल स्टॉर्म आए थे, यानी कि स्नो गिरा था बहुत ज्यादा और उस वजह से उनका खेत नष्ट हो गया था पूरा। तो वो क्या करते हैं लेंचो, भगवान को, उनको तो हेल्प चाहिए होती है, इसलिए वो भगवान को लेटर लिखने का सोचते हैं। और वो जब लेटर लिखते हैं तब उस लेटर के जो मेन एनवेलप होता है उस पे लिखते हैं टू गॉड, मतलब कि भगवान के लिए ये लेटर है, और वो पोस्ट कर देते हैं। और फिर हमारे पोस्टमैन और पोस्टमास्टर जो है वो लेटर रीड करते हैं, उनको बहुत ज्यादा फनी लगता है वो, बट फिर भी पोस्टमास्टर जो थे हमारे वो क्या करते हैं, वो लेटर बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं और वो लेटर को सोचते हैं कि वो रिप्लाई देने का। जब वो लेटर खोलते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि बस लेटर को रिप्लाई करना इतना ज्यादा ईजी नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनको पैसों की भी जरूरत है, क्योंकि लेंचो ने उन भगवान के पास 100 पीसोस मांगे थे, मतलब 100 आप बहुत ही ज्यादा पैसे मांगे थे लेंचो ने। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने सैलरी का थोड़ा अमाउंट निकालते हैं, फिर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज को भी बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप कॉन्ट्रीब्यूशन करें, अपने दोस्तों को भी कहते हैं, और फिर इस प्रकार से करके वो 70 पीसोस कलेक्ट करके लेंचो को देने की वो ठान लेते हैं। पर जब लेंचो को जब ये मनी ऑर्डर मिलती है लेंचो पोस्ट ऑफिस में आने के बाद, तब लेंचो भगवान को दोबारा से लेटर लिख के क्या कहता है कि भगवान आपने जो मुझे पैसे भेजे हैं वो मुझे मिल तो गए हैं, पर मुझे वो पैसे बहुत ज्यादा कम है, मुझे इतने में मुझसे मेरा जो काम है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो आप क्या करो मुझे रिमेनिंग पैसे जो है, रिमेनिंग अमाउंट भी मुझे दे देना, पर एक काम करो आप लेटर में मत भेजो, मतलब आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजो, आप कोई और तरीका अपना लो लेटर भेजने के लिए। तो मतलब ये थी पूरी की पूरी स्टोरी, बट इसका जो क्रक्स है, इसकी सेंट्रल आइडिया मैं आपको बता देती हूँ। इसकी सेंट्रल आइडिया ये थी कि हमने भगवान पे या फिर अपनी जो वो सुपर नेचुरल पावर है, जब हम उस पर इतना ज्यादा भरोसा रखते हैं, भले वो फिर वो चीज जो है वो एग्जिस्ट करती हो या नहीं हो, पर जब भी हमारा फेथ जो है, हमारा विश्वास काम कर जाता है और मुश्किल से मुश्किल हालातों से भी हमें निकलने की एक राह दिलाता है। तो ये कहानी थी हमारे A Letter to God, इस पोयम की पूरी समरी। अब हम क्या करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो की आशा क्या थी। लेंचो होप फॉर अ गुड रेन्स एज इट वॉज मच नीडेड फॉर गुड हार्वेस्ट, मतलब कि लेंचो बस बारिश का शुरू में इंतजार कर रहा था ताकि उसको अच्छे से उसका क्रॉप जो है वो अच्छे से बहुत ज्यादा उसको फ्रूट्स मिले उसके, मतलब कि लेंचो की इतनी दिनों की मेहनत जो है वो बस एक बारिश पे टिकी थी कि बारिश अगर अच्छे से आती है तो उसका जो खेत है वो अच्छे से फूलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, मतलब कि आपको अगर याद होगा तो लेंचो ने कहा था कि जो बड़े वाले कॉइन्स है वो 10 पीसोस के हैं, छोटे हैं वो सॉरी 10 सेंट्स के हैं और छोटे जो है वो 5 सेंट्स के हैं। तो ऐसा लेंचो ने क्यों कहा था कि ये नए नए कॉइन्स हैं। तो बच्चों इसका जवाब है, लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी, यानी कि लेंचो खुश हो जाता है क्योंकि वो बारिश जब आती है तो वो लेंचो को एक प्रकार से विश्वास दिलाती है कि हाँ इतनी ज्यादा बारिश तो आ गई है, मतलब कि फसल भी है वो भी उतनी ही अच्छी मतलब ग्रो होगी और लेंचो को उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, मतलब कि रेन जो है वो किस प्रकार से वहां का टेम्परेचर, वहां का तापमान बदल गया और लेंचो के पूरे खेत पे उसका क्या इफेक्ट पड़ गया। तो बेसिकली the rain changed into hailstones as strong wind began to blow with huge hailstones began to fall along the rain. All the crops in Lencho's field got destroyed because of the weather conditions. So guys, अब आते हैं हमारे question number 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें पूछा जाता है, व्हाट वर लेंचो'स फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप, मतलब कि लेंचो की क्या फीलिंग्स थी जब जो बर्फबारी हो रही थी वो बंद हो गई, रुक गई तब। तो इसका जवाब है, लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप एज एवरीथिंग वॉज रूइंड एंड देर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड टू हिज फैमिली। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड टू हिज फैमिली। मतलब कि लेंचो जब वो बर्फबारी बंद हो गई तब लेंचो की आशा जो थी एकदम वो टूट गई, क्योंकि उसको पता था पूरे साल भर उसके फैमिली को खाना खाने के लिए अब कुछ नहीं बचेगा। वरना उसका प्लान क्या था, उसका ओरिजिनल फार्मर्स यही करते हैं ना कि जब भी उनका क्रॉप फसल जब उनकी उग जाती है वो जितना खुद को चाहिए होता है वो अपने लिए रख देते हैं और बाकी का बचा कुचा वो बाजार में जाके बेच देते हैं एंड दे गेट द अदर ग्रोसरीज, मतलब बाकी की जो चीजें चाहिए होती हैं वो चीजें वो खरीद लेते हैं। बट क्योंकि अभी हेल स्टॉर्म की वजह से लेंचो का पूरा खेत बर्बाद हुआ था, इसलिए अब लेंचो श्योर था कि उसकी पूरी फैमिली जो है साल भर भूखी रहेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, मतलब कि लेंचो को किस पे भरोसा था, किसके ऊपर विश्वास था और इसके लिए लेंचो ने क्या किया अपने भरोसे के चलते। सो जवाब है, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन इट्स वन कंसाइंस एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड अगेन। जवाब यह है इसका कि लेंचो को भगवान पे पूरा भरोसा था और उसको ये भी पता था कि भगवान बस बाहरी इंसान को ही नहीं देखते बल्कि भगवान को इंसान के मन में क्या चल रहा होता है, कंसाइंस यानी कि खुद के दिमाग में अच्छा बुरा ये भी लगता था लेंचो को कि भगवान को सब, भगवान भरा बुरा सब जानते हैं और वो भी भगवान चीजें जानते हैं जो इंसान अपने शब्दों में नहीं कहता, और अपना जो विश्वास है वो सिद्ध करने के लिए या फिर अपना अपने विश्वास को सार्थक ठहराने के लिए लेंचो ने भगवान के लिए एक खत लिखा, एक लेटर लिखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, हु रेड द लेटर, मतलब कि वो जो लेटर लेंचो ने लिखा था वो किसने पढ़ा। इसका जवाब है, द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर, मतलब कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया खत पढ़ने के बाद। सो बेसिकली द पोस्ट मास्टर लाफ व्हेन ही रेड लेंचोज लेटर बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वॉज मूव बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। He didn't want to shake Lencho's faith, so he decided to collect the money and sent it to Lencho on behalf of God. मतलब कि पोस्टमास्टर बहुत ज्यादा हंसती है लेंचो का लेटर पढ़ के, बट लेंचो का जो फेथ है वो, उनका जो विश्वास है वो पोस्टमास्टर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, लेटर खोला, लेटर पढ़ा और लेंचो को भगवान की ओर से लेंचो को पैसे भी दे दिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, मतलब कि क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था खत देख के और पैसे देख के। तो जवाब है इसका नहीं, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड द लेटर एंड द मनी फ्रॉम गॉड, ही बिलीव दैट गॉड हेल्प हिम, मतलब कि उनको इतना ज्यादा लेंचो को भरोसा था भगवान पे कि उनको लगा कि हाँ भगवान ने ही वो सारा का सारा पैसा उनको भेजा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, वॉट मेड लेंचो एंग्री, मतलब कि लेंचो को गुस्सा क्यों आया। There were only 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in amount made him angry. मतलब कि लेंचो ने 100 pesos मांगे थे, 100 pesos मांगे थे भगवान से, बट क्योंकि बस 70 pesos मिले थे और 30 pesos उसमें नहीं थे, इसलिए लेंचो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और किस पे गुस्सा आया, पोस्टमैन, मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे उन पे गुस्सा आया, पोस्ट मास्टर को इंक्लूड करके। अब आते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन पे, जो आपके आपके लेसन के नीचे गए दिए गए हैं वो सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं उनके जवाब। आते क्वेश्चन नंबर 1 पे, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, मतलब कि लेंचो को किस पे ज्यादा भरोसा था और कौन कौन से स्टेटमेंट है लेसन में जो आपको ये बताते हैं कि हाँ भाई लेंचो को इन चीज भगवान पे, इन लाइन पढ़ के हमें, ये लाइन पढ़ के हमें पता चलता है कि हाँ लेंचो को भगवान पे भरोसा था। तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड As he is instructed that God knows everything and helps us in every problem. There are few sentences which show it. नीचे दिए गए कुछ sentences show करते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope from God. ये sentence हमें बताता है। एक और sentence है, All through the night, Lencho thought only of his one hope द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस. ये एक लाइन हमें बताती है. एक और लाइन है बच्चों, गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. ये लाइन भी हमें बताती है कि लेंचो को भगवान पे कितना भरोसा था. एक सेकेंड लास्ट लाइन है, ही रोट टू गॉड ऑन एनवेलप पुट द लेटर इन साइड एंड स्टील ट्रबल वेंट डाउन. ये एक लाइन हमें बताती है. और आखिरी लाइन कौन सी है, गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक नॉर वुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. ये थोड़े बहुत ये 5 लाइन्स हैं जो हमें बताती है कि लेंचो का भरोसा भगवान पे था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड. मतलब कि भगवान पोस्ट मास्टर लेंचो को भगवान के नाम से क्यों खत भेजते हैं और क्यों भेजते हैं और क्यों वो भगवान का नाम नीचे लिखते हैं. सो बेसिकली द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड्स अलाइव एंड फर्म एज ही हैड कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट. मतलब कि आपको याद होगा कि पोस्ट मास्टर ने कहा था कि काश मुझे भी इतना भगवान पे भरोसा होता जितना कि लेंचो को है. और पोस्ट मास्टर ये भी कहते हैं कि लेंचो का जो फेथ है भगवान के ऊपर बने रहने के लिए वो उन्होंने ऐसा किया था. When postmaster reads the letter of Lencho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and he decides to answer the letter. He gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God and signs the letter to God so that Lencho's faith does not get shaken. मतलब कि Lencho का भरोसा ना टूटे इसलिए postmaster क्या करते हैं, अपनी सैलरी में से भी कुछ पैसे दे देते हैं और अपने दोस्तों को और बाकी एम्प्लॉयज को भी कहते हैं कि आप भी अपने सैलरी में से कुछ कुछ पैसे इसमें आप कंट्रीब्यूट करिए. आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु ही हैड सेंट मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट. मतलब कि क्या लेंचो पता करने की कोशिश करता है कि उसको किसने पैसे भेजे थे, वो क्यों नहीं करता ऐसा. तो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंट द मनी टू हिम because he had never suspected the presence of God and had complete faith in God. He could not believe that it could be anybody else other than him who would send him money. His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for the help of for his help in his problem. मतलब कि लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता और ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करता कि किसने उसको वो पैसे भेजे थे. क्यों? क्योंकि इस कदर भगवान पे लेंचो का विश्वास होता है कि वो ये भी नहीं, वो भगवान की प्रेजेंस जो होती है, मतलब भगवान का अस्तित्व भी उसके लिए डाउटफुल नहीं होता. वो डायरेक्टली बिलीव करता है कि क्योंकि मैंने भगवान को लेटर भेजा तो भगवान ने ही मुझे पैसे भेजे. आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन. रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट. An ironic situation is strange or amusing because it is opposite of what is expected. मतलब कि ironic situation क्यों होता है ये, क्योंकि हमें मतलब ये पता है कि पैसे तो postmaster ने और बाकी लोगों ने ही दिए थे, फिर भी लेंचो किस पे डाउट करता है कि जिन्होंने उसको पैसे दिए थे उन्हीं पे डाउट करता है. वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है. Lencho thinks that the post office employees has taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from God and in the letter there was only 70 pesos and God cannot make such mistake. So he assumes that they have stolen the money and the irony in this situation is that Lencho suspects those people who helped him in his problems and tried to keep his faith alive in God. मतलब कि ये बहुत ही मतलब व्यंग्यात्मक कहने वाली बात है कि जिसने लेंचो को हेल्प की लेंचो उसी पे डाउट लेता है. पर वो ऐसा डाउट क्यों लेता है बच्चों, क्योंकि उसको भगवान पे इतना ज्यादा भरोसा होता है कि अगर मैं भगवान से पैसे मांगू, भगवान से मदद मांगू तो भगवान ही मुझे मदद करेंगे. और क्योंकि वो पैसे 70 पीजोस थे और 100 पीजोस नहीं थे, तो लेंचो को लगता है कि उसको पोस्टमैन और बाकी के जो लोग हैं पोस्ट ऑफिस में, उन्होंने ही लेंचो को चीट करा है. ओके, आते क्वेश्चन नंबर 5 पे. Are there people like Lencho in real world? What kind of person would you say he is? You may select the appropriate word from the box to answer the question. यहाँ पे आपको कुछ words दिए हैं: greedy, naive, stupid, ungrateful, selfish, comical and unquestioning. इसमें से आपको सही जवाब ढूंढना है. इसका जवाब है: It is almost impossible to find a person like Lencho as he is unquestioning and naive kind of person. He is not stupid if he does not know who has sent him the money or letter will reach the God without any address. It is Lencho's faith in God in real world. People are selfish and greedy and Lencho is totally lovable and different. मतलब कि लेंचो जैसा इंसान इस दुनिया में पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जिसको भगवान पे आंखें मूंद करके भरोसा हो. लेंचो को यहाँ पे स्टूपिड भी नहीं कहा जाता क्योंकि उसने वो खत लिखा बिना किसी पते के. पर उसको स्टूपिड नहीं कहा जाता क्यों? क्योंकि उसको भगवान पे भरोसा होता है और उसने बस भगवान पे भरोसा करके ही वो खत लिखा होता है. तो हमें यहाँ पे ये सीख मिलती है बच्चों कि अगर आपका भरोसा, अगर आपका विश्वास इतना ज्यादा स्ट्रांग हो, इतना ज्यादा तगड़ा हो, तो कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स जो है, पूरी दुनिया कंस्पायर करके आपको मदद करने के लिए जुड़ जाती है. ये यहाँ पे बेसिक जो आइडिया है वो ये है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ. हाउ वाज द कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड? मतलब कि यहाँ पे एक युद्ध जैसा लग रहा है, छोटा सा द्वंद जैसा लग रहा है, जहां पे किसका किन में से द्वंद लग रहा है? ह्यूमन मतलब इंसान और नेचर के साथ, और बिटवीन ह्यूमन मतलब दो इंसानों के बीच भी एक प्रकार का द्वंद सा लग रहा है. और हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, मतलब ये जो द्वंद है वो किस प्रकार से हमें दिखाया दर्शाया गया है. सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर हमें इस प्रकार से दर्शाया है कि ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेंचोस क्रॉप्स बाय द हेलस्टॉर्म. As Lencho was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. मतलब कि लेंचो ने बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, मतलब उसने बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी करा था कि वो अपने खेत पे बहुत हार्डवर्क करके जो फसल है वो उगाए, पर फिर भी क्या हुआ? हेलस्ट्रॉम आए, स्नोफॉल हुआ, बहुत बड़े बड़े मतलब बर्फबारी हुई और उसकी वजह से लेंचो की पूरी मेहनत जो थी वो पूरे साल की वो वेस्ट चली गई. और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लेंचो मतलब बहुत ही हार्डवर्किंग भी था, पर फिर भी उसका हार्डवर्क किसी काम नहीं आया और उसका जो खेत था वो डिस्ट्रॉय हो गया. ये दर्शाता जाता है हमें कि मतलब ये किससे दर्शाता गया है हमें? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. Now there is also conflict between humans and humans. ये हमें किस प्रकार से दर्शाया गया है ये देखेंगे. The story also illustrated another conflict between humans and humans themselves, as the postmaster along with his friends and staff sent Lencho money that Lencho demanded from God, although they didn't know Lencho. Lencho blamed them for taking away some amount of money. He called them a bunch of crook. This shows that man does not have faith in other men, thereby giving the rise to conflict. मतलब कि पोस्टमास्टर और बाकी के पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय होते हैं वो तो कोशिश करते हैं लेंचो को पैसे देने की, बट लेंचो यहाँ पे उन पे भरोसा नहीं करता. लेंचो को बस भगवान पे भरोसा होता है और वो उनको बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा है. जो पोस्ट ऑफिस में जो काम कर रहे होते हैं लोग उनको बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा है. यही एक चीज है जो दर्शाती है कि लेंचो को या फिर इंसानों को इंसान पे भरोसा नहीं रहा है और देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन. अब आते हैं यहाँ पे थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज पे. यहाँ पे कुछ बहुत इजी सवाल दिए हैं, उनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं. द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है. वॉयलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन सर्कल, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साइक्लोन, CYCLONE, साइक्लोन. दूसरा सवाल है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, इसको क्या कहा जाता है? हमें यहाँ पे मिडिल वर्ड इसका ए कहा गया है, तो इसका जवाब है GALE, गेल. ओके, आते क्वेश्चन नंबर 3 पे. अ वॉयलेंट ट्रॉपिकल स्ट्रॉम विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, इसका जवाब है टाइफून, TYPHOON. मतलब कि वॉयलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. वॉयलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ फनल, तो फनल जैसा शेप होता है वॉयलेंट, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टॉर्म आता है, तो चक्रवात जिसको हम कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है अगर उसको शेप ऑफ टनल में होता है? वो टॉर्नेडो कहा जाता है उसको, TORNADO, टॉर्नेडो. आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. A violent storm with a very strong winds स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। इसका जवाब क्या है? बहुत ही वायलेंट चक्रवात जो आता है हवा के साथ, स्पेशली वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में। इसका जवाब है हुरिकेन। स्पेलिंग है इसकी HURRICANE, हुरिकेन। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो हमें पूछता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन स्पिनिंग मोमेंट एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डैमेज। इसका जवाब है व्हर्लविंड, WHIRLWIND, व्हर्लविंड। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे आपको पूछा है मैच द सेंटेंसेस ऑफ कॉलम ए विद द मीनिंग ऑफ होप इन कॉलम बी। तो इसका जवाब मैं आपको बताते जाती हूँ। फर्स्ट जो जवाब क्वेश्चन है, विल यू गेट द सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू स्टडी इन कॉलेज, आई होप सो। इसका जवाब है बी, थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैव हैपेंड। ओके, मतलब कि आपको ओवरऑल पूछा गया है कि एक होप जो वर्ड है वो किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट सवाल है विल यू गेट द सब्जेक्ट इफ यू वॉन्ट टू स्टडी इन कॉलेज, आई होप सो। इसका यहाँ पे होप का मतलब है यहाँ पे थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन और इट मे इवन नॉट हैपन, मतलब कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरा सवाल है वन होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट वन डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग। इसका जवाब है ई ऑप्शन जो है आपको, शोइंग कंसर्न दैट वॉट यू से शुड नॉट ऑफेंड और डिस्टर्ब द अदर पर्सन, अ वे ऑफ बींग पोलाइट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द डिस्कवरी विल दिस डिस्कवरी विल गिव अ न्यू होप टू HIV एड्स सफरर्स, मतलब कि ये एक डिस्कवरी HIV एड्स के लोगों को जो सफर करें उनको होप दे देगी। इसका सवाल कौन सा आता है? इसका जवाब आंसर है इसका ए, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस विल नॉट नोटिस आवर मिस्टेक, मतलब कि होप कर रहे हैं कि जजेस हमारी मिस्टेक ना नोटिस करें। इसका जवाब है बच्चों एफ, यानी कि ऑप्शन एफ जो है, विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज वेरी अनलाइकली, मतलब कि एक ऐसी चीज का होप करना जो कि मोस्ट प्रोबेबली होनी होने से रही है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वन कॉल्ड अर्ली इन होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल। इसका जवाब है डी, फिफ्थ का आंसर है डी, वॉन्टिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट इज क्वाइट पॉसिबल, मतलब कि एक ऐसी चीज जो हमको होनी चाहिए होती है और हो भी जाती है वो बेसिकली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जस्ट व्हेन एवरीबॉडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन, मतलब कि जब सारे लोगों ने अपनी आशा जो थी छोड़ दी थी, फिशरमैन आ गए 7 दिन की साइक्लोन के 7 दिन बाद। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगता है हमें? सी ऑप्शन, स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन, मतलब कि यहाँ पे होप का मतलब है कि एक ऐसी चीज को, मतलब ऐसी चीज हो जाएगी, इसका होप छोड़ देना, इसकी आशा छोड़ देना कि कोई अच्छी चीज हो जाएगी। ओके, अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। जॉइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, होम, हुज, विच एंड विच एज सजेस्टेड। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है I often go to Mumbai. Mumbai is a commercial capital of India. यहाँ पे हमको यूज करना है which. तो यहाँ पे कहाँ पे यूज होगा वर्ड? I often go to Mumbai, which is the commercial capital of India. आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। My mother is going to host a TV show on cooking. She cooks very well. यहाँ पे ऐसा who word यहाँ पे कहाँ पे यूज होगा? My mother, who cooks very well, is going to host a TV show on cooking. Okay? आप यहाँ पे हुज वर्ड दिया गया है और सेंटेंस है दीज स्पोर्ट्स पर्सन आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, देयर परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट। यहाँ पे हुज वर्ड हमें कहाँ यूज करना है? दीज स्पोर्ट्स पर्सन हुज परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेंचो प्रेड टू गॉड हिज आईज इन टू आर माइंड, और यहाँ पे वर्ड है हुज, तो ये यहाँ पे वर्ड किस तरह से यूज होगा? लेंचो प्रेड टू गॉड हुज आईज सी इनटू आवर माइंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम। यहाँ पे वर्ड है हुम, वो वहां पे कैसा यूज करना है? द मैन हुम आई ट्रस्टेड चीटेड मी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं एक कोई वर्ड यूज करके। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. फाइंड सेंटेंसेस इन द स्टोरी विद नेगेटिव वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज एम्पैथेटिकली. आपको अगर याद होगा हमारे कुछ क्लासेस पहले मैंने आपको एम्पैथेटिकली का मतलब समझाया था. EMPHATICALLY एम्पैथेटिकली का मतलब है कोई भी सवाल करे बिना किसी चीज को कोई भी डाउट वगैरह ना लेते हुए किसी भी कोई भी चीज करना. तो सवाल क्वेश्चन है द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड हिमसेल्फ. और थर्ड सेंटेंस है द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर. ओके, तो आपको क्या करना है ऐसे सेंटेंस ऐसे वर्ड्स ड्रॉ करने, मतलब फाइंड द सेंटेंसेस इन द स्टोरी विथ नेगेटिव वर्ड्स कि जहां पे आपको नॉट या फिर नेवर ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे उस प्रकार से हमें फाइंड आउट करने. इसका जवाब है फर्स्ट का द ट्री लॉस्ट ऑल देयर लीव्स का जवाब है नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज. मतलब कि नॉट यहाँ पे जो वर्ड है वो नेगेटिव तरीके से यूज किया गया है. फिर ऑप्शन है बी द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. यहाँ पे नथिंग जो वर्ड है वो नेगेटिवली यूज किया गया है. क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं. द ऑप्शन मतलब जो सेंटेंस है सी वाला द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर. मतलब कि नेवर इन हिज करियर एज पोस्टमैन हैड सीन हैड दिस हैड ही सीन दैट एड्रेस. तो यहाँ पे नेवर वर्ड यूज किया गया है, नेगेटिव वर्ड जिसको हम कह सकते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. इन पेयर्स फाइंड मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो. ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड. वन हैज बीन डन फॉर यू. मतलब कि एक यहाँ पे आपको जवाब दिया गया है. एक का ऑब्जेक्ट है, मेटाफर है और क्वालिटी ऑफ फीचर कंपेयर की गई है. फर्स्ट है क्लाउड और यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड. और यहाँ पे क्वालिटी जो यूज की गई है वो है द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स. तो इसका जवाब हमने ढूंढना है. तो बच्चों यहाँ पे जो मेटाफर जो वर्ड है वो दर्शाता है कि किसी भी तरह का रूपक या फिर आपको कहते हैं लक्षण आप कह सकते हैं उसको, यानी कि सिम्टम यानी कि ट्रेट फीचर ये कुछ अदर वर्ड्स हैं मेटाफर को. कि बेसिकली मतलब ये होता है अन्योक्ति करना, है ना. मतलब एलिगरी यानी कि आप किसी भी चीज को ड्रामेटिकली उस तरह से दर्शाते हो इसको कहते हैं हम मेटाफर. ओके, तो इनका जवाब है फर्स्ट है आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑब्जेक्ट है क्लाउड. इसका मेटाफर यूज्ड है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, है ना. मतलब बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिकली दर्शाया है. और क्वालिटी है क्वालिटी फीचर्ड द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स, है ना. फिर यहाँ पे एक और वर्ड है रेनड्रॉप्स जिसका है मेटाफर कॉइन्स. मतलब रेनड्रॉप्स को कॉइन की तरह से कंपेयर किया गया है. और क्वालिटी है इसकी मनी दैट अ गुड क्रॉप विल ब्रिंग. नेक्स्ट वर्ड है हेलस्टोन्स यानी कि इसको कहा गया है कवि हमारे लेसन में फ्रोजन पर्ल्स यानी कि मोती कहा गया है इसको. और उसका क्वालिटी है क्यों कहा गया है क्योंकि वो ब्राइटनेस जिस प्रकार से मोती हमारे ब्राइट होते हैं उसी प्रकार से जो हेलस्टोन्स थे वो ब्राइट थे. फिर है लॉक्टस यानी कि जो कीड़ा मैंने बताया था आपको. मेटाफर यहाँ पे यूज किया गया है अ प्लेग ऑफ लॉक्टस यानी कि बहुत ही महामारी मतलब बहुत ही ज्यादा आना लॉक्टस. और क्वालिटी है एन एपिडेमिक या फिर डिजीज दैट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली एंड लीव्स मेनी पीपल डेड. यानी कि एक ऐसी महामारी जो कि स्प्रेड होती है और बहुत ज्यादा लोग मर जाते हैं. और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कहा गया आपको लेंचो. मेटाफर यहाँ पे है एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब कि बहुत ही ज्यादा सशक्त यहाँ या फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग जिस इंसान को हम कहते हैं वो. तो बच्चों ये जो हमारे एंटायर जो हमारा लेसन हमने पढ़ा अ लेटर टू गॉड उसमें से हमने क्या सीखा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बॉटम लाइन जो थी इस पूरे हमारे जो हमने लेसन पढ़ा इसकी बॉटम लाइन बस यही थी कि जब भी हम किसी भी चीज पे आंखें मूंद करके भरोसा करते हैं अच्छी चीज पे कोई भी मतलब किसी भी नॉर्मल रैंडम चीज पे नहीं, जब भी हम अच्छे चीज के ऊपर बहुत ही आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं तब वो चीज सक्सेस होती ही है. क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा उसके ऊपर उतना होता है कि पूरा यूनिवर्स जो है वो हमारी मदद करने के लिए पूरा संसार हमारी मदद करने के लिए उस चीज के लिए जुड़ जाता है. और इसी प्रकार से हमें जो चीज हमें लाइफ में हमारी चाहिए होती है हमारी जिंदगी में वो चीज हमें इसी प्रकार से मिल जाती है. और हम सक्सेस जो है हमारे लाइफ में हम कुछ अचीव करना या फिर हम कुछ पाने की जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। पर इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बस वो चीज पे भरोसा करके हमने रुकना नहीं है, बल्कि हमने भरोसा उस प्रकार से करना है उस चीज पे कि हमने हमारा हार्डवर्क भी है, मतलब हमारी मेहनत भी उस भरोसे को साथ देनी, हमारा भरोसा जो है उस मेहनत भी होनी चाहिए उस भरोसे में, तब भी ऐसी चीजें हमारे लाइफ में हो सकती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।